नमो महाबदन्नाय कृष्णते वस्तुपाय ते कृष्णाय कृष्णते चन्दनमे गोयक्षि दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्तनमस्तु सप्तपञ्चन गौराङ्गी गाधे वृन्दावनेश्वरि विशुभान् प्रणमामि हरि आदेविका कुम्भर्गतवत्याग्रवाचा जाते निपत्तभूमिदण्डवतो नमतार्पि अस्या प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा भागवत के आधार पर ही यह सही करता है, क्योंकि समस्त प्रणाली में श्रीमद् भागवत की अमल और निर्भर पूज्य प्रमाण उन्होंने सखरस का वर्णन किया। महाप्रभु जी ने कहा यह सब शास्त्र सारणीय बात ठीक है, किंतु उन्होंने कहा यदि और कुछ है आगे तो कुछ और आगे बतलाइए। प्रभु का यह उत्तम आगे कहा राय कहीं बात्सल्य कहीं सर्वसाधन बात्सल्य कहीं सर्वसाधन ममता ममता ही प्रेम है, प्रेम ही ममता है, ममता रहित प्रेम प्रेम नहीं है। परस में ममता नहीं इसलिए ब्रज में उसकी स्थिति नहीं बनी। दास रस में कुछ ममता होती है, ममता नहीं मेरे अपनत्व का भाव, यह ममत्व जितना ही प्रगाढ़ होता चला जाएगा प्रेम उतना ही पड़ता। आज जगत में सब चीज सस्ती है, सब कुछ सस्ता है, राजनीतिक और अर्थनैतिक स्वार्थ के लिए हम लोग परस्पर सर्व संसार के लोग जी रहे हैं, परस्पर वार्तालाप एक जगह एकत्रित होना सब कुछ ठीक है, किंतु परमार्थ के लिए हम लोग एकत्रित नहीं। आत्मा की भूख मर गई, और स्वार्थों की भूख, शरीर की भूख बढ़ी। जैसे जैसे प्रेम भी मर गया और हृदय में हम लोगों का प्रेम है, बहुत जगत में दुर्लभ है। चैतन्य महाप्रभु का एक प्रधान उद्देश्य जगत में कुछ प्रेम का प्रचार, इसलिए नाम के माध्यम से यथाशक्ति उन्होंने प्रेम का प्रचार। प्रेम में ममता प्रधान है, दास्य में ममता है, किंतु प्रगाढ़ ममता नहीं है, इसलिए प्रेम भी प्रगाढ़ नहीं है। जितना यह प्रेम प्रगाढ़ होगा ममता उतनी अधिक आएगी और जीव का स्वरूप उतना ही विकसित होगा। शिष्य के ऊपर नहीं था, अभी से हम लोग संसार के प्रति ममत्व को जहां तक हो सके कम करें, अनाशक्तम, और परमार्थ के प्रति ममत्व बढ़े। पहले साधन भजन में तो ममत्व हो, इसके बाद में शास्त्र में ममत्व। गुरु जो साधन सिखलाते हैं, वैष्णव लोग जो साधन सिखलाते हैं, उनमें ममत्व, भगवान की जो वस्तुएं हैं उसके प्रति ममत्व। मान लिया कि रास्ते में कहीं मोर पंख मिल गया, जो जमीन में पड़ा हुआ है उसके ऊपर में सभी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कारें जा रही हैं, सब लोग जा रहे हैं, आपने उसको देखा, क्या करेंगे? हमने भी ऐसा देखा तो देखकर के पैसा और लौटे तो कोई बात नहीं है, तो ममता नहीं। यदि उसे उठाकर अपने सिर पर रख लिया, हृदय में रख लिया, फिर उसको रख लिया, तो समझा जाएगा ये नहीं, वो मोर पंख आपका नहीं है, किंतु कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण से संबंधित है, उसमें ममत्व होना चाहिए। अरे कितना बच्चा है बच्चे, ममत्व होना चाहिए। ये ममत्व इस साधन अवस्था में ही सीखना पड़ेगा। गुरु जी की द्यूति खड़ानु को उल्लंघन मत करो, उस पर छाया न डालिए, उसका यथाचित सम्मान करो। गुरु जी का चित्र है, वैष्णव का चित्र है, भगवान का चित्र है ममत्व। उनकी कोई भी चीज हो, ठाकुर जी का कोई भी चीज हो, न तो हमारे उनको भोग्य है, न हमारा है, हमारा आराध्य है, ऐसे समझो। प्रत्येक चीज में अभी से ही साधन करो कि ममता, तब धीरे 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 भगवान में अपने आराध्य में। जब यही नहीं सीखेंगे, यहाँ पर उदासीन रहेंगे, तो वहां पर ममता कहां से आएगी? इसलिए ममता साधन में ही प्रगाढ़ होती चली जाए। ममता कैसी होनी चाहिए, उसी के लिए कह रहे हैं श्रीमद् भागवत से एक श्लोक। नंद की मां परोत ब्रह्मण से अजीव महोदय यशोदावा महाभागा पपौजस्यास्तं कर। यशोदा ने दूध नहीं पिलाया, कृष्ण ने पान किया, इतने आसक्त हैं। यशोदा जी का तो कृष्ण पर ममत्व है, तो कृष्ण का अपने आप ममत्व है। कृष्ण वैसे आत्माराम है, आपका काम है, उनकी कोई इच्छा नहीं। भक्तों का प्रेम देकर के उनका भी प्रेम जग जाता है, ठीक वैसा ही हो जाता है। भक्तों का जब कृष्ण के प्रति ममत्व आएगा तो उनका भी ममत्व अपने आप उत्पन्न होगा। जस्या स्तन पपौ, पपौ जस्या स्तन माने क्या,
जिसका स्तन पान किया,
जिसका स्तन पान किया, किसने,
कृष्ण ने
पान कराया है, ये लिखा है पान किया। इतनी उनको भूख और ललक हो जाती है कि वो दूध पीने लगते हैं, जो सुधा जी नहीं पिलाएंगे तो रोने लग जाएंगे, ऐसे नंदा की माता और ब्रह्मण, ये ब्राह्मण नंद महाराज जी ने ऐसा कौन सा काम किया, ऐसा कौन से तीर्थों में गए, ऐसा कौन सा दान किया, धर्म किया, तपस्या की, व्रत किया, तीर्थों में स्नान किया, जिसके फल से नंद बाबा बाबा बने, पिता बने, गोदी में खिलाया और उनको लाल लड़ाया, और यशोदा जी ने, यशोदा जी का दूध उन्होंने पान किया, यशोदा जी महाभागा और वो भी महाउदय महोदय इसी ममता की वजह से। उस दिन हमने शायद बतलाया था, किसी भी तपस्या से, दान से, व्रत से भगवान को नहीं पाएगा, संसारिक वस्तुओं को कुछ पाया जा सकता है, अर्थ धर्म काम ये तीन हो सकता है, किसी की तपस्या से, दान से, व्रत से, बस यहीं तक, इसे ऊपर में चीजें नहीं मिली। मोक्ष भी दान भक्त से नहीं होगा, वो भी अनाशक्ति है और भक्ति तो उसमें थोड़ी सी मिलनी चाहिए, तो भक्ति के प्रभाव से सहज ही वो पराभक्ति लाभ होती है और उस लाभ होने से मुक्ति भी अच्छा। बिना भक्ति के संयोग के कोई भी कर्म अपना फल नहीं देते। तो ये परीक्षित महाराज जी आश्चर्य चकित होकर के जब देखा, नंद बाबा जब वृक्ष गिर गए और नंद बाबा ने उनकी गांठ खोल दी जो यशोदा जी ने बांध दिया, और कृष्ण खूब जोर से रोने लगे, उनको शांत किया, उनको घर ले गए, फिर गुलाब किया, प्यार किया, और कहते हैं जरा वो जूती ले आना, तो उनकी जूती ले आती है। और जबकि सब लोगों ने गोवर्धन धारण को देखा, जो गोवर्धन ने कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन को धारण किया, तब ब्रज के जितने बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े लोग, बुद्धिमान, वो सब नंद बाबा के पास में नंद बैठक में बैठे और बैठ करके विचार किया। ये कृष्ण साधारण लड़का नहीं था, गोवर्धन को धारण कर दिया, अब उनकी आंख खुली, एक छोटा सा बालक गोवर्धन को धारण कर दिया, ये साधारण बात नहीं। अरे तो पहले हम लोग समझे नहीं, उतना तो इसी ने मारा, उतना का दूसरे किसी ने नहीं मारा, और अघासुर बकासुर ये जितने थे सबको इसी ने मारा, और इसी ने ये गोवर्धन धारण किया, इसलिए यशोदा और नंद को बुला करके समझा दिया जाए, इस बच्चे को अपना बेटा ना समझ करके भगवान समझें, या कोई एक अद्भुत देवता है शक्तिशाली ऐसा समझें, ये नारायण ही की कृपा से इसके घर में आया है, या नारायण ही खुद है, जब गर्गाचार्य ने कहा नारायण समझे तो ये जरूर ऐसा ही। नंद को बुलाया गया और कहा कि देखो अपनी पत्नी को बाल मंत्र निषेध कर दो, ये कृष्ण को डांटे डपते नहीं, उसको भर्त्सना ना करें, गाली गलौज न दें, हाथों को ना बांधें, अरे उसको खूब प्यार करें, उसकी आराधना करें, और नंद बाबा अभी मत समझिए कि आपका लड़का है। बहुत तरह से समझाया था, नंद बाबा ने थोड़ा सा हंस दिया, आप लोग इसे ब्रह्म कह रहे हैं, आपकी बुद्धि की बलिहारी है, ये ब्रह्म कैसे हो गया, और यदि ब्रह्म भी है तो अपने घर का ब्रह्म रहे, हमारे घर में लड़के के रूप में आया है, तम तो उसको शासन करेंगे, उसे खिलाएंगे पिलाएंगे, लाड करेंगे, कभी शासन करेंगे, सब प्रकार से हम देखेंगे बिगड़ न जाए। अरे ये जो थोड़ी सी देर हो जाती है और भूख लग जाती है तो रह नहीं सकता, तो मचलने लगता है और चोरी करता है, हमारे घर में नहीं सबके घर में तो ये ब्रह्म चोर होता है, और उसको भूख लगती है, हमने सुना है जब ब्रह्म को भूख प्यास नहीं लगती, इसको तो भूख भी लगती है प्यास भी लगती है,
मक्खन खाने का ये लोभी ब्रह्म को लोभ होता है और थोड़ी सी बात होने में दांत कड़कड़ करता है, क्रोधित हो जाता है, मुख लाल हो जाता है, खड़िया तोड़ दिया, ब्रह्म बदमाशी करता है, ये ऐसा करता है। ब्रह्म को तो काम क्रोध लो मद मोह मात्सर्य इसको सब ही कुछ है, तो ये ब्रह्म कैसे हुआ, इस तरह से काम करके हंस दिया। तो यदि ब्रह्म भी आए तो कोई बात नहीं, हम तो इसको ऐसी शिक्षा दी, बस ऐसा उनका ढक गया थी माधुरी भाव। तो इसी तरह से अरुण नंद महाराज जी ने कौन सी कुंठाई तपस्या की, ऐसा क्या किया था जिससे कि वो उनके पिता भी और इस प्रकार से लाभ त्याग कर रहे। और यशोदा जी आज तक जिसको कोई नहीं बांध सका, जिसका अंतर नहीं है बाहर नहीं है, जिसका भीतर नहीं है बाहर नहीं है, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड में उसके एक लोम कूप में कोटि कोटि ऐसे ऐसे ब्रह्मांड विश्व सब, और सबके बाहर में वही उसके भीतर में है, पेट में है या लोम कूप में सब ऐसे ऐसे ब्रह्मांड कोटि कोटि अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सभी लोग, इसलिए उसका बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, उसके अंदर ही सब है और सबके अंदर में है, आत्मा के भी साक्षी और परमात्मा के रूप में है, अणु अणु में भी परमाणु में भी वो है, तो इसलिए उसके अंदर में अब कोई रह नहीं सकता, वो बाहर में भी है सबके और सबके भीतर में भी है, उसका बंधन कैसे होगा, बंधन जिसका बाहर ही नहीं है भीतर ही नहीं है, बंधन कैसे होगा, इसलिए यशोदा जी ने किंतु उसको बांध दिया प्रेम से, इसलिए यशोदा जी लेकर के गोदी में उसको सोती हैं, सुलाती हैं, तरह तरह की कथाएं कहती हैं और उसका मन हरण करती हैं। तो ऐसी यशोदा जी ने कौन सी तपस्या की, जैसे कि उनका दो दिनों ने पान किया खुशी के नेम, तो वो बतला रहे हैं कि उन्होंने सहज भाव से कह दिया कि पूर्व जन्म में द्रोण और भरा थे, इन्होंने बहुत काल तक तपस्या की कठोर। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले कि वर्मा, तो उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति हम लोगों का की परम भक्ति हो, उत्तम भक्ति, बस इतना ही ना, उन्होंने कहा एवं अस्तु ऐसा ही हो, उन्होंने पुत्र हो आप पुत्र के प्रति आपका प्रेम ये नहीं कहा, आपके भगवान के प्रति हमारी उत्तमा भक्ति हो। अब उत्तमा भक्ति किसको कहते हैं, उसके अंदर में ये सब कुछ आ जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा उत्तमा भक्ति हो बोना है एवं अस्तु। ब्रह्मा जी यदि कहा जाए ब्रह्मा जी के वर्षे इनको कृष्ण के प्रति ऐसा बात्सल्य स्नेह आया, उन्होंने ऐसा प्रेम किया, तो यह ठीक नहीं कहा, ठीक नहीं, क्यों, जिस चीज को ब्रह्मा ही कोई नहीं है, जब तदभूरी भाग गमी है जन्म तुम्हा पटक जन्म जज गोकुले की कतमान रजोग से कम जग जीवितम को निखलन भगवान ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि अहो इन ब्रजवासियों की चरण की धूली हमारे मस्तक पर लग जाए, कहीं जहां कहां कहां भी अन्यत्र भी कहीं भी हमारा जन्म हो जाए, घास पेड़ पौधा लता धूली जो कुछ भी हो जाए और गोपियों की चरण की धूली हमारे में ऊपर में लग जाए, गोपियों की चरण की धूली हमारा जीवन साथी, किसी की भी गोपियों की नहीं किसी भी ब्रजवासियों की किसी की भी चरण की धूली हमारे ऊपर लग जाए हमारा जीवन। उद्धव जी ने किंतु वर्गीकरण करके बताया ठीक करके निश्चित क्या गोपियों की, और इन्होंने क्या कहा किसी भी ब्रजवासी कतमांगरी कतम किसी भी एक ब्रजवासी की चरण की धूली
हमारे सिर पर पड़ जाए हमारे जीवन। इसमें कोई भी ब्रजवासी आ जाए तो किसी भी ब्रजवासी की चरण धूलि की वंदना कर रहे हैं और कहां जसोदा जी को ये वर देना जे तुमको कृष्ण के प्रति पुत्र वात्सल्य भाव आए, ये कैसे संभव होगा जिसके पास में है ही नहीं है चीज, चीज ही नहीं है। इधर से आ जाइए, वात्सल्य भाव आ जाइए, जिधर वात्सल्य भाव नहीं है, ब्रज का कोई भी भाव नहीं है जिसके लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हमको ये चीज हो जाए। हमारे पास में 5 रुपया नहीं है, 1 पैसा नहीं है और उसको कोटि कोटि रुपया दे दिया, ये कैसे संभव? इसलिए ब्रह्मा जी के बल के द्वारा ये सब नहीं। तब हाँ एक एक भाव है जिसके अंदर में हो सकता है, क्या है? भगवान से भी बड़े भक्त होते हैं ब्रह्मा जी, हमारे संप्रदाय के आदि गुरु हैं, तो हमारे गुरु में इतनी शक्ति नहीं है। अरे दे दो राधा कृष्ण जी को, तो ये गुरु जी ब्रह्मा जी गुरु हैं। यदि हमारे गुरु जी से प्रार्थना से ऐसा हम पा सकते हैं तो हमारे गुरु जी के परम गुरु जी और उनके परम गुरु जी के परम गुरु ये क्या चीज नहीं दे सकते। इसलिए भगवान उनके इस भाव को रक्षा करने के लिए मानो इसलिए पुत्र के रूप में, ये भी बात ठीक है। इसलिए कहते हैं जब ब्रह्मा जी की कृपा से ही हुआ, किंतु हाँ एक बात है और, नारद जी नंद और जसोदा कोई साधक जीव नहीं है और साधक जीवों के द्वारा ऐसा प्रेम नहीं है। अधिक से अधिक कोई साधन करेगा तो ब्रज का उनका पड़ोसी होकर के जन्म लेगा और एक वर्ष में जैसे कृष्ण उनके घर में चोरी किया या ब्रह्मा जी के मोहन के समय में पुत्र होकर के हुए, ये सब वास्तव जैसे अस्वादन है, उनके लड़के बने। किंतु नंद बाबा जसोदा जी का जैसा होना ये असंभव, ये नहीं। वो नित्य सिद्ध, वो कृष्ण के ही कृष्ण ही हैं, उस रस का आस्वादन करने के लिए अपने से ही अपना रस आस्वादन, वो बलदेव जी के एक तरह से काय बिहु कहो अथवा उन्हीं के स्वरूप या प्रकाश है, और बलदेव जी कृष्ण ही हैं इसलिए उन्हीं के प्रकाश है। इसलिए नंद बाबा वात्सल्य रस की प्रधान मूर्ति हैं, उनके अंश द्रोण और हरा है, ये दिखलाने के लिए यहाँ उन लोगों ने भी कुछ तपस्या करके ऐसा पाया, ये दिखलाने के लिए लोग हताश न हो जो भगवान को पाया नहीं जाएगा वात्सल्य भाव, इसलिए उन्होंने ऐसा, इसलिए उनके अंश हैं, उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कहा और उसके पाठ में वही नंद और जसोदा में वो अपने पूर्ण अंशी में मिल करके पूर्ण रूप से वात्सल्य रस आस्वादन किया, और जब उनकी लीला समाप्त हो गई उसमें से निकल करके अपने धाम में वो चले गए या गोलोक में जाकर के ब्रज में गोप गोपी होकर के वात्सल्य रस का आस्वादन। इसी के लिए वो दूसरी बात कह रहे हैं कि ये द्रोण और फरा साधक थे, साधन से भगवान नहीं मिलते, इसी के लिए बतलाया नहीं मंदिरं चो न भवो नपसे अंग अप्त संशय प्रसाद अम्ले भीरे गोपी जतक प्राप्त जो मुक्तिदार, वो मुक्ति तार मुक्ति देने वाले, मुक्ति दार मुक्ति को देने वाले, दो अर्थ होंगे, विशेष मुक्ति अर्थात भक्ति, विशेष भक्ति या विशेष मुक्ति है
अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का नाम ही
विमुक्ति,
विमुक्ति दान। स्वरूप में प्रतिष्ठित माने क्या? मुक्ति ही तो अन्यथा रूपम स्वरूपेन अवस्थिति इति मुक्ति। कुछ लोग मुक्ति का अर्थ ये समझते हैं कि भगवान में मिल जाने का नाम, ब्रह्म में मिल जाने का नाम। बहुत से ऐसे वैष्णव लोग भी हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली है, तिलक माला भी ले ली है, महाप्रभु के संप्रदाय में भी है, किंतु वैष्णव का संग नहीं किया। और संग होने नहीं होने के कारण केवल ऊपरी भावों को लिया और रहस्य के अंदर में प्रवेश नहीं कर सके। तिलक माला ले लिया, नाम भी करने लग गए, किंतु विचारों को नहीं लिया। ऐसे भी हम समझते हैं कि 99 लोग ऐसे ही होंगे, 100 बहुत कम होंगे जो संप्रदाय में आकर के तिलक माला के साथ साथ में भी उनके विचारों को ग्रहण किया। शंकराचार्य जी ने बताया ये जगत मिथ्या है, जी ब्रह्म ही है, अभी अपने को ये जी माना। जब ही उसके गुरु की से आदान प्रदान होगा सत्संग में, अपने तत्व को जान करके ये जब अविद्या दूर हो जाएगी तो वो देखेगा कि मैं ही ब्रह्म, इसी का नाम है मुक्ति। किंतु हमारे श्रीमद् भागवत में और वैष्णवों ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने या किसी भी वैष्णवों ने इसका अनुमोदन नहीं किया। जगत झूठा नहीं है, जगत झूठा है तो साधन इत्यादि से भी कुछ झूठे हो गए, तो गुरु जो कह रहे हैं वो बात भी, शंकराचार्य भी जो कह रहे हैं या उनके संप्रदाय के लोग, तो शंकराचार्य जी झूठे हो गए, उनके गुरु झूठे हो गए, तो वेद पुराण रामायण महाभारत गीता इत्यादि सब कुछ झूठा हो गया, जगत झूठा हो गया, तो उसी में तुम भी है, तो सभी झूठे हो गए। ऐसा नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी ने या शास्त्र में जगत को झूठा नहीं बतलाया, तात्कालिक सत्य बतलाया। जगत अनित्य है, झूठा नहीं। हमारी छाया तक जब झूठी नहीं है, छाया झूठी नहीं है, छाया जो चलती है हमारे साथ में झूठी है कि सत्य है?
काया है तब तो छाया,
काया है और उसकी छाया है, उसमें धूप नहीं जाती, काया के साथ में कुछ सादृश्य है, तो झूठी कैसी होगी? अनित्य है। ऐसे ये संसार में तो राम कृष्ण इत्यादि सभी कुछ असत्य हो जाएंगे, हमारा प्रवचन भी असत्य हो जाएगा, सब झूठा हो जाएगा, तो उपदेश गीता में ये किस लिए सब दिया गया या वेदों में उपदेश हो गया, इसलिए यह बात एकदम अधिकांश लोग साधारण सुनने में जरा अच्छा लगता है ना, ये जगत झूठा है, तो जगत झूठा नहीं है, सत्य है, किंतु तात्कालिक सत्य है, इस चीज को समझो। दूसरी बात, कभी भी जीवात्मा परमात्मा नहीं होगा, ब्रह्म नहीं होगा, कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। हाँ, ब्रह्म के समान सुख लाभ कर सकता है, बस इतना ही, मुक्त हो जाए। तो मुक्त माने क्या? ब्रह्म में मिलना नहीं, उसमें मुक्ति माने अपने स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, इसका नाम है। तो यहां पर विमुक्ति दा विशेष रूप से मुक्ति, अर्थात जो मुक्ति देने वाले हैं, जीवों को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कराने वाले हैं, जो जीव जैसा है, ऐसे जहां तक उत्तम सर्वोत्तम प्रेम है, जो मधुर रस प्रेम तक वो भी स्वरूप संसार में दे सकते हैं, गोपी भाव को भी दे सकते हैं। उन्होंने जो प्रसाद मैंने कृपा की यशोदा के ऊपर में, गोपी मैंने यहाँ पर यशोदा की, उन पर जैसी कृपा की ब्रह्मा के ऊपर में उन्होंने ऐसी कृपा नहीं की, शंकर को वैसी कृपा नहीं की, लक्ष्मी जी पर ऐसी नहीं कृपा की, किसी पर भी ऐसी कृपा नहीं की जो यशोदा जी के ऊपर। बिरेंचो माने ब्रह्मा जी, जो कि भगवान के नाभि कमल से निकले हैं, गर्भदशा जी के पुत्र हैं, पुत्र होते हुए भी उस कृपा को लाभ ना कर सके, और शंकर जी उनके हर हर एक आत्मा होकर के भी उस कृपा को लाभ नहीं कर सके। सब समय वस्तक्षक पर विराजमान रहने वाली लक्ष्मी जी या चरण पर उठने वाली लक्ष्मी जी भी उस कृपा को लाभ नहीं कर सके जिस कृपा को गोपी। कृपा माने क्या? ममता। यशोदा जी ने ममता के द्वारा कृष्ण की वह सेवा की कि कृष्ण उसके वशीभूत हो गए और किसी के वशीभूत हो गए। ब्रह्मा जी के वशीभूत हुए बछड़ों के हरण के बाद में कितनी स्तव स्तुति उन्होंने की, और कृष्ण ने उनके तरफ में नजर भी नहीं दिया, बस हाथ में कमल लीला कमल घुमा करे और एक बच्चे के सखा के स्तंभ पर हाथ रखा, उपेक्षा कर दी, उनकी कोई सुनाई नहीं। प्रसन्न हुए कि नहीं हुए कुछ पता ही नहीं लगा ब्रह्मा को। फिर ब्रह्मा जी अपने आप उसका स्तुति करते चले, और शंकर जी का तो अपराध लेते नहीं है, किंतु इस प्रकार से उनके वशीभूत ये भाव नहीं देखा जाता कभी भी किसी भी लीला में, न रामलीला में, न कहीं विष्णु की और लीलाओं में, न ही कृष्ण लीला में वशीभूत नहीं। बल्कि उनके सामने ही गोपियों ने उनके गालों में गुलचे लगा दिए शंकर जी को। तो उन्होंने स्वयं शंकर जी ने समझा लिए हमारे ऊपर महती कृपा आज हो गई, मैं तो ऐसा भी योग्य नहीं था जो गालों में गुलचा मारे हैं गोपी, किंतु आज हमारे ऊपर में ये बड़ी भारी कृपा बरस गई।
हरिहर एक आत्मा, हरिहर उधर से एक आत्मा
है, इसलिए तो यही उन पर कृपा हो कि उनका पिटवा दिया, यही उनकी बड़ी भारी कृपा हो गई। उनके वशीभूत नहीं होंगे, शंकर जी आए वशीभूत हुए। बड़ासुर के की सहायता करने के लिए आए तो उनको कहा गया खबरदार ऐसा मत करना, ये उनको कर दिया। ये दुष्ट लोगों के संग में पढ़ करके क्या कर रहे हैं, मिरांदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृतासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतिशे।
यं प्रव्रजन्तमनुते तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकर्तव्या जुहाव द्वेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयम्। त्वयैवास्मि त्वयैवास्मि यजमानि त्वया विना प्रतिज्ञाय राधेयम्। इसलिए कृष्ण जितना अपने आप लगा लें उनकी सेवा में बस पूरी एकता का प्रेम है, निष्ठा है, किंतु सेवा वासना और ममत्व बहुत कम, अपदास्य। दास्य किसको कहते हैं? वासना और ममत्व भी कुछ कुछ आ गई है और ये रहता कि ये मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं, उनकी मैं क्या क्या सेवा करूं, सब समय सेवा में, सब समय। यह सेवा दो प्रकार की होती है, ऐश्वर्य और अनुरागमयी और बिना अनुराग, ये दो प्रकार। और सब वैकुंठ में और दूसरी जगहों में ऐश्वर्यमयी सेवा होती है और ब्रज में होती है अनुराग के सेवा, और इसके बाद में हुआ सख्य। गुरु वैष्णव की क्या सेवा करें, भगवान की क्या सेवा करें, क्या सेवा करें। सबसे अब किंकर तरफ हम समझें और अभी से मन लगाएं, हम कितने तरह के कार्य करते हैं, किंतु भगवान के कार्य करने में, गुरु वैष्णव के क्या सेवा में हमारा मन मिले, उसको मोड़ करके किधर। बिना किए कुछ आदमी रह नहीं सकता, इसलिए क्यों ना हम करें। आप यदि नहीं करेंगे, आप नहीं चलेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तब पैर में गठिया हो जाएगी, तब लोग डॉक्टर कहे ये साइकिल चलाओ, उससे ये सोचता। इसको कहते हैं विश्रम विगत ब्रह्म माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बुद्धि दूर हो गई है और हम बराबर हैं, एक कोटि के हैं, ऐसा समझ करके उसमें सेवा होगी, किंतु प्रणय के साथ में, तब वो सेवा नहीं कर आएगी, वो सख्त भाव है। एक सेवा पैर दबा रहा है सेवा, और एक कोई सखा गले में हाथ लगा दिया है, गले में हाथ लगा था कि कोई बात है। दोनों से उस व्यक्ति को सुख किस में होगा, पैर दबवाने में होगा ना गले में सखे ने हाथ लगा करके और कुछ अरे तरे कह रहा है उसमें होगा, सुख किस में होगा, सखा के। इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना नहीं सुनते और सखाओं के स्तंभ पर हाथ रख करके बड़ा आनंद ले, उनके तरफ में देखते भी नहीं मिले, इसलिए उससे ये ममता बढ़ती जाएगी, सेवा की वासना बढ़ती जाएगी। अब ये और बढ़ा दो ममत्व अधिक और लाउन पाउन हर्षम कारण, ये भाव आ जाएगा, लाल्य का भाव आएगा, पाल्य का भाव आएगा, तो ये इसको कह देंगे वासना। उससे श्रेष्ठ है यहाँ तक का हमने, इसमें
बड़े हो जाते हैं और विषय छोटा बन जाते हैं,
इसमें शांत का निष्ठा, दास्य के सेवा भावना और सख का असंकोच सेवा प्रवृत्ति, असंकोच और वो लाल्य भाव एक और, इसलिए बड़ा ही मधुर होता है, इसके वश में भगवान हो जाते हैं। अब इसमें कल हम लोग यही पढ़ रहे हैं, नेमं ग्रंचो न भयो नश्य पंग संशया प्रसाद अमले धीरे गोपी जब तक प्राप्त विमुक्ति। इसमें वात्सल्य रस के लिए कहें यशोदा जी को जो कृपा लाभ हुई, विरंची को अपने पुत्र होने पर भी वो लाभ नहीं, शंकर जी हरिहर एक आत्मा होने पर भी वो उनको प्राप्त नहीं, और लक्ष्मी जी उनकी बस वक्ष विलासिनी होने पर भी अथवा उनकी चरणों की सब समय सेवा में अविरत रहने पर भी वो प्रसाद उनको वो कृपा नहीं। यशोदा जी को क्या कृपा मिली और ब्रह्मा जी को कैसे नहीं मिली, अब थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार। वो यशोदा जी को क्या मिली, जो परम विमुक्तिदा मुक्तिदाता है, विशेष करके मुक्ति देने वाले, सब कुछ देने वाले समझ लो, प्रेम में सर्वस्व सबको देने वाले हैं, उनसे ऐसी कृपा यशोदा जी को मिली जो उनको नहीं मिली। वो क्या कृपा मिली, क्या हुई, वात्सल्य का भाव है, सेवा है, जैसे उनके प्रेम में जैसे वशीभूत हो जाते हैं ऐसे ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी जी में नहीं, प्रेम से बंधन उन्होंने स्वीकार किया, ये बंधन नहीं बल्कि ये प्रेम, प्रेम की वश्यता ये है। बंधे ये प्रेम वश्यता की एक तरह से विशेष पराकाष्ठा है, ब्रह्मा इत्यादि में शंकर में और लोगों में ऐसा नहीं देखा जाता, सखाओं में भी ऐसा नहीं देखा जाता, सखा लोग बांध दें ऐसा नहीं, पर मोटा मोटी सत्य और वात्सल्य दोनों की सीमा अनुराग है, दोनों अनुराग पर चलते
हैं, अनुराग के चरम सीमा पर,
किंतु कोई कोई सखा का महाभाव तक स्पर्श कर लेता है, सुदाम
सुबल
उज्ज्वल उज्ज्वल इत्यादि पहुंच जाते हैं, मैया का भी ऐसा हो जाता है, मैया का भी प्रेम कम नहीं, जो सुधा कांतिम अवस्था माने क्या,
अनुराग की चरम सीमा,
अनुराग की चरम सीमा में क्या होगा, एक मध्यम अधिकारी अपनी चरम अवस्था तक पहुंच गया तो माने क्या, उत्तम में भी पहुंचा तो नहीं किंतु उत्तम तक एकदम अब उत्तम ही होने वाला है, तब तो उसमें नहीं होगा महाभाव की कुछ, जैसे एकदम विरह में तड़पने लगी यशोदा जी कृष्ण जिस समय उठक गए, बोल नहीं पा रहे, होश नहीं, उनकी क्या स्थिति होगी, ऐसी अनु अब मैंने पहुंचने वाली है महाभाव में, और सब सुबल इत्यादि पहुंचे जाते हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं, यशोदा जी ने कृष्ण ने मट्टी खाई दूसरी बार वाली, कुछ बड़े हो गए हैं मट्टी खाई, उन्होंने उसमें देखा मुख में झांका और झांक करके विस्मित हो गए, अनंत ब्रह्मांड देखे सब कुछ उसमें देखा, यहां तक कि अपने को और कृष्ण को भी उसी मुख में देखा, एक तो कृष्ण के मुख में देखा और उस मुख में भी कृष्ण को देखा और अपने को भी देखा, कैसी आश्चर्य हुआ, सोचने लगे ये क्या हुआ, सोचते सोचते कर ये सब मैं ये स्वप्न देख रही हूं कि यथार्थ में देख रही हूं, भूत पिशाच लगे ने ये क्या हुआ,
किंतु उनके मन में कभी भी ये भावना नहीं आई कि हमारा वाला ब्रह्म है भगवान है, कभी भी एक मिनट के लिए भी आई। अर्जुन को हो गया, अर्जुन देख करके फरहरी कंप में लग गए और बोले जैसे मैंने आपको सखा कहा ये अन्याय मैंने किया है, ये मेरा दोष हो गया, आज से मैं आपको सखा और ये नहीं कहूँगा, और कभी आपको रथ चलाने के लिए नहीं कहूँगा, ये तुम हमारा रथ चलाओ, तुम नहीं कहेंगे, ये हमारा बहुत बड़ा धर्म है। इस तरह से फिर भगवान ने जब योग माया के द्वारा उनकी बुद्धि ढक दी तो फिर हुआ, किंतु इनको हुआ ही नहीं। थोड़ी देर के बाद में घर में ले गई और गैया मंगाकर उसका गोबर और मूत्र मिलाकर उसके पूंछ में लगाकर और उनको चारों तरफ से लगाया, स्वस्ति वाचन करवाया और
ब्राह्मणों को दान दिया,
वो
रक्षा
कवच मंत्र इत्यादि मुख में ये रक्षा करें, ललाट में ये, कान में ये, इंद्रियों में ये सब, अंगों में ये सब उनकी करने लगे। रात में सोए चांदनी रात कृष्ण यशोदा जी की गोदी में बाहर में ही आंगन में सो रहे हैं। कृष्ण मैया से जिद कर रहे हैं, मैया हमें कोई कथा सुना, वो कोई कथा सुना रहे हैं। इतने में कृष्ण की नजर पड़ी चांद पर, अभी कृष्ण के अभी दो दांत आगे के केवल निकले हैं, दो दांत, और कितना सुंदर उनका रूप।